अब चलते हैं सूरत तला नाम पे। इस हिस्से के डूस एंड डोंट्स आप खुद लिखेंगे, हो सकता है आपको आगे दे दिए जाएं और हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इसका हक तो होता ही है। सूरत अल अनाम बड़ी खूबसूरत सूरत है। अभी तक की सूरत पढ़ने के बाद आपको इसका मिजाज मुख्तलिफ लगेगा, क्योंकि सूरत फातिहा के बाद से लेकर अभी तक मायदा तक जो सूरतें थीं ये मदनी सूरतें थीं, तवील सूरतें थीं, जो नस्बतन हुक्मी सूरतें होती हैं, इसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं। लेकिन मक्की सूरतें जो हिजरत से पहले के दौर में नाजिल हुई थीं, वो सूरतें अमूमन ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल और ईमान बिर रिसाला पे होती हैं। आप कह लीजिए कि मक्की सूरतों में अकीदा है और मदनी सूरतों में शरीयत है, और इसी तरह से मामलात और इबादात का तज़किरा है। तो सूरत अलनाम पे ज़रा एक नज़र डालते हैं कि इसके मज़ामीन क्या हैं। तो तज़कीर बी आला इल्ला, आला क्या है? नेमतें। अल्लाह ताला अपनी नेमतें दिखाकर हमें तज़कीर करते हैं कि अल्लाह ताला के हक को अपनी ज़िंदगी में जगह दो, पहचानो। फिर बुनियादी ईमानियात का जिक्र है, बुनियादी ईमानियात। फिर इसी तरह से मुशरिकीन से दो टोक गुफ्तगू, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। आइए जरा आयतों के साथ इसके मौजू लिखते हैं, टॉपिक्स। आयत 1 से 3 सिफाते बारी ताला का बयान है। 4 to 6 मुशरिकीन मक्का के लिए अजाब की धमकी है, क्योंकि अल्लाह के नबी को उनको बात कहते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका था। आयत 7 to 11 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई है कि आप दिल ना खट्टा करें, इनको छोड़ दीजिए इनके हाल पे, आप हक अदा कर रहे हैं, अब अगर इनको नहीं इस बात से कोई फ़ायदा तो फिर इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। अपने आप को सुरखरू रखिए, दूसरे आपकी बात से कोई फ़ायदा उठाएं ना उठाएं इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र ना कीजिए। फिर आयत नंबर 12 से 14 अल्लाह ताला की कुदरतों का बयान है कि कैसे अल्लाह ताला इस कायनात में वलहू मा सकन फिल लैली वन नहार की सूरत में हर एक की टेक केयर करता है, और लिमम मा फिस समावाती वल अर्द, और ख़ास तौर पर कतब अला नफ्सिहि रहमा, कि अल्लाह की इतनी कुदरतें हैं कि इतना कुछ उसके अख्तियार में, फिर भी उसने अपने ऊपर रहमत लिख ली। 15 to 18 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी का बयान है कि इतना कुछ उनको मिला लेकिन इसके बावजूद कुल इन्नी अखाफ इन असईतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं तो गुनाह करते हुए अपने रब से डरता हूँ उस बड़े दिन के पकड़ से। क्या पता चला कि आप गुनाह करते तो नहीं, लेकिन हमें सिखा गए कि अगर कल तुम्हें कोई गुनाह करने की दावत दे तो यही बोलना। तो लिख लीजिए आयत नंबर 15, अपने लिए नोट कर लीजिए कि मैंने इसको ज़ुबानी याद करना है, हर उस वक्त के लिए संभाल के रखना है जब कोई अपना प्यारा, कोई दोस्त, कोई शौहर, कोई बीवी, कोई और अपना अजीज मुझे किसी भी गुनाह पे माइल करे, मुंह से कुछ नहीं कहना, ना बुरा भला बनना है, बस एक आयत याद करनी है, कुल इन्नी अखाफ इन असईतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। और फिर आयत नंबर 19 से 20, 19 से 20 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही है। आयत 21 से 24 शिर्क करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। 25 से 31 25 to 31 सरदाराने कुरैश का इबरतनाक अंजाम, और 32 दुनिया की जिंदगी महज एक खेल है, एक तमाशा है, जिसको पाने के लिए, जिसमें खुद को ऊंचा उठाने के लिए लोग भाग रहे हैं। आपको किसी स्टेज शो में बादशाह का किरदार भी अदा करने को मिल गया तो क्या होगा? स्टेज से उतरते ही हो सकता है आपकी जूती तक कोई चोरी कर गया हो। इस दुनिया में सब कुछ भी मिल जाए तो आपकी जान जाते ही एक छोटी 2 गज जमीन और मट्टी में आपको दफन कर दिया जाएगा। वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुन वलहुन, क्यों गम करते हो इसका? वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताकिलून। देखिए कुरान पाक का एक अंदाज आप नोट कर लें, जहाँ दुनिया और आखिरत का तकाबुल होगा जैसे इस आयत में, तो आखिर में अफला ताकिलून अक्ल की बात होगी, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए सिर्फ अक्ल ही काफ़ी है, किताब कोई नाम भी पढ़ सके तो। फिर इसी तरह से आयत 33 से 36 अल्लाह ताला फरमाइशी मौजज़ा नहीं दिखाएगा, यानी ये कोई ऑर्डर प्लेस करने की जगह, ये ना किया तो वो ना किया, तो ऐसा ना किया तो वैसा हुआ, तो ये क्या होगा? ये तो नाकारा बातें हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का फरमाइशी शो पेश करते हैं, हमारी बातें मानी जाएं। अल्लाह ताला हमारी हर बात पे लब्बई कहे और हम ना उसकी किसी बात पे लब्बई कहने वाले बने, और जब इस तरह की बातें आती हैं तो इंसान वाकई अपने आप को फिर अल्लाह ताला की निगाहों से हटाता है। मक्का वालों ने पैगाम को सुनकर मानने की बजाय मस्तियां की। उन्हीं मस्तियों का इधर जिक्र कर दिया गया कि देखो तुम क्या करते हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या चीजें रखी, किस तरह से तुम्हें फायदा दिया, और तुम उस चीज को अपनी जिंदगी में संजीदगी से लो। और इसी तरह से फिर आयत नंबर 37 से 39 सूरत अलनाम कुदरत के मौजज़ात चारों तरफ फैले हुए हैं। आंख देखो, खोल आंख, फलक देख और उभरते हुए चांद को देख और सूरज को देख, यानी आपके मेरे चारों तरफ अल्लाह ताला के वजूद की निशानियां मौजूद हैं, लेकिन हमारी अंदर की आंख बंद होती है इसलिए वो नहीं नजर आती। और लोगों को देखकर और उनकी कामयाबियां और उनकी बनाई हुई आर्टिफिशियल चीजों को देखकर मरूब होते रहते हैं। आयत 40 से 41, मुश्किल में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो, है किसी की औकात के अल्लाह के माँ सिवा तुम्हारी मदद कर सके, अगैर अल्लाह ही तादून इन कुंतुम सादिकीन। फिर इसी तरह 42 से 45, अल्लाह ताला आफात झंझोड़ने के लिए भेजता है। अल्लाह ताला ये वॉर्न करता है, झटके देता है, जैसे सोते शख्स को उठाने के लिए बाज दफा उसका कंधा पकड़ के उसको हिलाना पड़ता है। लाल लहुम यतदर्रउन। और आयत 46 से 49, मुश्रिकीन के लिए झंझोड़ने का सलूक, यानी अल्लाह जब किसी को मुस्तकिल शिर्क में मुब्तला देखता है तो फिर उसको इस तरह से झंझोड़ता है कि फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शयइन, नेमतों को बढ़ाता है लेकिन हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुबलिसून। तो ये पकड़ बड़ी सख्त होती है, अल्लाह आपको मुझे बचाए। और आयत नंबर 50 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी का जिक्र है। आयत 51 से पता चलता है कि कुरान से हिदायत किसको मिलेगी। आप भी पूछें किसको मिलेगी, आपको मिलेगी, मुझे मिलेगी, जी इंशाल्लाह, लेकिन उसकी शरायत पूरी करेंगे तो मिलेगी। और वो शरायत क्या हैं, अल्लज़ीन यखाफून युक्षरू इला रब्बिहिम और लअल्लहुम यत्तकून। तकवा के साथ कुरान को सुनेंगे, आखिरत की जवाबदेही के साथ बैठेंगे तो फ़ायदा होगा। 52 से 55, फ़ुक़रा की इज्जत अफजाई का बयान। वला तत्रुदिल्लसी नजदू न रब्बहुम बिलगदाति वलशीशी यूरीदू न वछह। तो फ़ुक़रा की इज्जत अफजाई, यानी वो लोग जो सुबह शाम इल्म पाने के लिए अल्लाह के नबी के पास बैठे रहते थे, तो उनकी इज्जत करो, ये ना कहो कि हाँ जी अब इनको तो और कोई काम नहीं, यही तो करेंगे। फिर आयत 56 से 58, मुशरिकीन की तरफ से समझौते की पेशकशें, ये ना हो तो वो ना हो, यानी बारगेनिंग पे आ गए थे वो लोग जिनको दलाइल से बात समझ आ तो गई थी लेकिन मानना नहीं चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं इनको, कह दो कुल इन्नी अला बैनत मिन रब्बी, मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे रब ने बहुत रोशन दलील दे दी, आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल विथ माई ऑन नॉलेज। और मुझसे और मुतालबे सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके दिल कन्विंस नहीं होते। आयत नंबर 59 भी देखिएगा, अल्लाह के इल्म की वसअत का बयान है। वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यालमुहा इल्ला हुवा, यानी गैब की चाबियाँ उसके पास, खजानों की चाबियाँ उसके पास। वयालमु मा फिल बर्रि वल बहरी, खुशकी और तरी में क्या वो भी उसको जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, ये तो ऑटम में कभी सुने ना तो वाकई प्यार आ जाता है। कोई पत्ता जो दरख्त से गिरता है अल्लाह को उसका भी पता है। और वला हब्बतिन फिज़ ज़ुलुमाति अर्दी, कोई दाना जो ज़मीन के अंधेरों में है। वला रुतबिन वला याबिस, अभी खुश किया है या अभी ज़मीन ने फाड़ कर उसको नरम कर दिया। इल्ला फी किताब मुबीन, वल्लाह के इल्म में है, इतना जानने वाला, क्या उसकी नज़र आपके मेरे दिल पे नहीं होगी। मेरी आँख ने क्या देखा वो नहीं जानता, मेरे कान ने क्या सुना वो नहीं जानता, मेरे दिल में क्या क्या ख्यालात उभरते हैं वो नहीं जानता। कोशिश कीजिए अंदर बाहर से साफ होने को, क्योंकि मेहमान तो सिर्फ घर के ड्राइंग रूम से ही चला जाएगा, अल्लाह ताला आपके एक एक कोने को जानता है, दिल दिमाग आँख जुबान, ख़यानत आँखों की भी, ख़ायनतुल अय्युन, इन सब को अल्लाह ताला की नज़र से देखिए। और आयत 60, वफात का इत्तलाक नींद पर भी होता है, यानी जब हम सो जाते हैं ना तो हम एक किस्म की अधूरी मौत में चले जाते हैं, हर रोज़ उससे वापस आते हैं। तो जो अल्लाह नींद से बेदार कर देता है क्या वो कब्रों से निकाल नहीं सकता। और फिर आयत 61 से 64, इंसान सरापा अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान अल्लाह ताला के इख्तियार से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वहुवल काहिरु फौका इबादे। तो अल्लाह ताला की फौकियत को महसूस कीजिए। پھر آیت 65 سے 67 اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تین صورتیں ہیں اس کے اندر. وہ چاہے تو اوپر سے عذاب لے آئے, چاہے تو نیچے سے لے آئے, اور چاہے تو تمہیں گروہوں میں بانٹ دے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پکڑتا ہے تو یا حکمرانوں کو سخت دل کر دیتا ہے, یا نیچے جو ملازمین اور انڈر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بغاوت پیدا کر دیتا ہے, اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح سے پھر یا تو آپس میں جھگڑے, لڑائیاں اور اختلافات شروع کرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کو اس سے بچائے. پھر اس کے بعد آیت 68 سے 69 غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے. غیرت ایمانی کے تقاضے کس طرح سے کھول کھول کر اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے کہ وہ محفلیں, وہ جگہیں جہاں اللہ کی دین کی حدیں ٹوٹتی ہوں ادھر سے اٹھ جاؤ. خبردار, تم کسی خوشی کے نام پہ, کسی پیارے کے نام پہ, کسی رنگ رونق کی محفل میں, کوئی سنت طریقوں سے ٹی وی محفلوں میں, بدعت کی محفلوں میں, اور ایسے طوس و رباب کی محفلوں میں نہیں بیٹھ سکتے جہاں سراسر شیطانی ماحول بن جائے. اسی طرح پھر آیت نمبر 70, دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا انجام بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑے گا, اور پھر ایسے لوگوں سے کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. دیکھیے یہاں کفر کا لفظ آیا, یعنی دین کو کھیل بنانا, مذاق کرنا, دین کے نام پہ محفلوں میں دین کا رنگ نہ ہو, اور اسی طرح خوشیوں کی محفلوں میں اللہ کی نافرمانی کا رنگ ہو. اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت غصہ آ رہا ہے. اور اسی طرح آیت 71 سے 73 اجتماعی زندگی کی برکتیں, ٹیم ورک کی برکتیں, مل کر کام کرنے کی کیا خوبیاں اور کیا کچھ ملے گا, اور اسی طرح سے ہدایت کی طرف آتے ہوئے شخص کے قدم کیسے بھی لوگ کیوں نہ روکیں, اگر اندر سچائی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور بچا لیتا ہے. اور اسی طرح سے پھر آیت 74 سے 79 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین پر اتمام حجت. ہر طرح سے حجت تمام کی کہ اندھیروں میں پیدا ہونے والا اور پلنے والا بچہ ذرا سا جوان ہوتا ہے اور اپنے ہی باپ کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے کوسچن مارک بن جاتا ہے, اور پھر کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال ھذا ربی, یہاں سے سفر شروع ہو کہ آخر میں جو نتیجہ نکالا وہی اولو الالباب تھے نا, تو کائنات پہ غور کر کے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یعنی میں ان سب کو پیدا کرنے والے رب کو مان گیا, کیونکہ یہ چیزیں تو ایک وقت کے بعد ڈوب گئیں یا پھر پیچھے رہ گئیں. پھر اسی طرح آیت 80 سے 82 جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آیت 83 کیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ وقت کے لیے شرک کیا؟ قطن نہیں کیا. 84 سے 87 انبیاء کرام کے پیارے ناموں کا خوبصورت گلدستہ ہے. 25 کے قریب نبیوں کا نام لے کر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے بھی عمل ضائع کرتا. تو آیت 88 میں شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے, اور آیت 89 اہل یثرب کے لیے بشارت ہے, یعنی اللہ اپنے نبی کو کیسے مکہ سے نکال کر مدینہ میں لے آئے, اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک خوشبختی کی بات تھی. آیت 90 تمام انبیاء راہ حق پر تھے, اور 91 سے 92 یہود کا جھوٹ جو وہ اکثر اللہ کے نبی اور اسلام کے بارے میں بولا کرتے تھے, اور ایسے لوگوں کی پھر موت کی سختیاں کیسی. آیت 93 یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا سچی نبوت کو جھٹلانے والا, اس کی موت کا وقت جب آئے گا. وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ, فرشتے پکڑیں گے اور ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے اپنی جان آج خود نکالو. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ اس بری موت سے بچائے. اور آیت نمبر 94 قیامت کے دن تمام انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا, یعنی وہاں سب اگلے پچھلے جمع کر دیے جائیں گے, اور وہ لوگ جن کی سفارشوں کی امید تھی اور جو سفارش کرنے والے تھے ان دونوں کے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا دے گا الذین زعمتم انکم فیکم شرکا, لیکن وہاں تو کوئی کسی کو پہچان بھی نہیں رہا. پھر آیت 95 سے 99 تک اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے, جس میں ستاروں کی بھی بات ہے مردوں کو زندہ کرنے کی, اور اناروں پہ غور کرنے کی بھی باتیں ملتی ہیں, اور کھجور और जैतून और अंगूरों की बात भी है। कायनात पे नज़र डाल लीजिए, आपको अल्लाह ताला बहुत करीब दिखेगा। और आयत 100 से 105 तौहीद का बयान और शिर्क की नफ़ी, और 106 से 108 अहम हिदायात हैं। 109 ईमान वालों के लिए तसल्ली, और 110 जो बहुत ही ज़्यादा इंसान का शऊर बेदार कर देती है, वनुकल्लिबु अफ़ीदतहुम वअबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा वनज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, हक़ कबूल करने की तौफीक सलब कर ली जाती है। बार बार किसी विंडो के ऊपर पॉपअप आने वाले को ना टच किया जाए तो वो बंद हो जाता है। तो हिदायत एक गयूर मेहमान है, आपके दिल पे आती है, नॉक करती है, लेकिन दरवाज़ा ना खोलें तो वो चली जाती है। और हिदायत का दरवाज़ा दिल के अंदर की तरफ से खुलता है, बाहर से कोई ज़बरदस्ती आपको हिदायत पे नहीं लगा सकता। तो ये तो था पूरी पारे का खुलासा। चंद हिदायत लीजिए ताकि इस पैगाम को सुनने के बाद कुछ करने के लिए क्लैरिटी हो। आयत 17 से आपने मैंने एक हिदायत नोट करनी है, कुल नफ़ा नुकसान इसका मालिक अल्लाह है। वहीं यमसस कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा, वहीं यमसस कभी खैरिन फहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो इसके सिवाय इसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई इसको रोकने वाला नहीं, वो हर चीज़ पर कादिर है। ये अकीदा बना लीजिए, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। फिर आयत 32 से एक हिदायत लेते हैं, असल हकीकत क्या है। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन वलहुन वलद्दारुल आखिरतु लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताकिलून, यानी इस दुनिया के धोखे में नहीं पड़ना, आखिरत के घर की फिक्र करनी है। फिर आयत 46 अल्लाह ताला की कुदरतों का बयान, और इस पे गौर करते हुए हमने फिक्र करनी है कि कहीं अल्लाह ताला हमारी ये नेमतें छीन ना लें। कुल अरअयतुम मिन अख़ज़ल्लाहु सम'अकुम व बसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिही उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति थुम्मा हुम यस्तिफ़ून, कह दीजिए कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें फिर बख्शे। देखो हम किस किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं, फिर भी ये लोग रूगर्दानी करते हैं। तो ये आंखें हमेशा नहीं देखती रहेंगी, ये कान सल्ब किए जा सकते हैं, ये दिल बंद होगा, अल्लाह ना करे इनका गलत इस्तेमाल किया तो पकड़ भी होगी। फिर आयत 52 से अमल लीजिए, गरीब मुसलमानों की दिलजोई करनी है, यानी वो लोग वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वलशी युरीदूना वजह, अमूमन ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, ये क्या मांगने के बहाने आके बैठ जाते हैं, ये दर थोड़ी सुनने आती हैं, मांगने आती हैं, और ये हर वक्त हर जगह आपके साथ ही क्यों होती हैं। तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए, ऐसे लोगों की कदर कीजिए जिनको अल्लाह ने सुबह को भी इल्म का शौक़ दिया और शाम को भी इल्म का ज़ौक़ दिया। फिर आयत 59 इल्म इलाही की जामियत, कितना अल्लाह का इल्म है, गैब की कुंजियाँ उसके पास, जंगलों दरियाओं में हर चीज़ का उसको पता, पत्ता भी गिरता है तो उसको पता चलता है। तो फिर अमल ले लीजिए कि फिर अपने दिल को भी साफ सुथरा रखना है, आँख को भी साफ रखना है और कानों को भी, क्योंकि अल्लाह की नज़र उन पे है। आयत 65 अज़ाब इलाही की तीन अकसाम जो हम देख चुके, कि अल्लाह ताला चाहे तो ऊपर वाले हुक्मरानों को, बड़ों को, जो भी आपके टेक केयरर्स हैं, उनके अंदर दिलों में आपकी सख्ती डाल दे, आपके मातहतों को आपके लिए बवाले जान बना दे, यानी औलादे नाफरमान हो जाए या फिर गिरोह गिरोह हो जाए। किसी को भी इसमें से एक या तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मिलें तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला कुछ इशारे दे रहे हैं। फिर इसी तरह आयत 108 इश्तियाल अंगेज़ रवैये की ममानियत, यानी दूसरों को गुस्सा दिलाने वाली तबलीग नहीं करनी, बल्कि वला तसुब्बुल्लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाह, अब आप किसी को गाली देंगे, यानी जिन लोगों को ये मुशरिक लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको गाली ना दो, ये सब कहीं अल्लाह को बेअदबी से बुरा ना समझने लगे। देखिए बाज़ फ़कीर को आप कहते हैं बाबा माफ़ करो अल्लाह देगा, तो हमारे असलाफ कहा करते थे कि ये ना कहा करो, बल्कि ऐसे वक्त में गुस्सा दिलाओगे हो सकता है वो अल्लाह के खिलाफ कुछ कह दे। तो ये थी हिदायत, डूज एंड डोंट सब आपको तरीका सिखा दिया गया है, आयतों के नंबर भी बता दिए गए, अब आप उस पर गौर किया करेंगे। आज की हदीस ले लेते हैं, जिसने कुरान की तरफ दावत दी उसे सीधे रास्ते की हिदायत दे दी गई। ए अल्लाह हमें भी सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।